بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہم لوگ جس ٹاپک پر بات کر رہے تھے کہ جیسے مبشر بھائی پہلی دفعہ ہیں تو میں اس کو اپ ڈیٹ کر دوں تھوڑا سا ایک منٹ میں، کہ ہمارا جو یہ 15th یعنی فورٹ نائٹلی سیشن یہاں پر ہوتا ہے، تو اس میں ہمارا جو موضوع ہے، اور اب کافی ٹائم ہو گیا اس موضوع کو، وہ ہے تربیت و تہذیب نفس، تزکیہ نفس. اور ہم نے اس چیز کو اس طریقے سے بیان کیا تھا کہ تہذیب نفس کے بنیادی طور پر تین اسٹیجز ہیں، ٹھیک ہے، تین اسٹیجز ہیں جن میں سے دو پر ہم بات کر پائیں گے، تیسری شاید ہمارے سلیبس سے باہر ہو یا ہمارے قد سے باہر ہو اس پر گفتگو کرنا. پہلا جو ہے وہ کیا ہے، تزکیہ ہے یا تخلیہ ہے، یعنی تخلیہ ہے. تخلیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے نفس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس کو ڈیولپ اور گرو کرانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ کہ آپ اپنے نفس کو ان تمام برائیوں سے خالی کریں جو اچھی صفات کو آپ کے نفس میں پیدا نہیں ہونے دیں گی. یعنی بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے اگر آپ کسی زمین میں زراعت کرنا چاہتے ہیں، ایگریکلچر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو زمین میں سے ان تمام خرابیوں کو دور کرنا پڑتا ہے کہ اگر وہ خرابیاں رہیں تو آپ لاکھ اس میں بیج ڈالتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، فصل اگے گی نہیں، یا اگے گی تو خراب اگے گی. تو اس کو کہتے ہیں تخلیہ. تخلیہ یعنی خالی کرنا، نفس کو پاک کرنا، دور کرنا. عام طور سے زیادہ تر افراد جو ہے نا اس نفس کو خالی کرنے کے مرحلے کو ہی تزکیہ سمجھ لیتے ہیں. نہیں، تزکیہ کمپلیٹ پروسیس کا نام ہے. یعنی زمین صاف کرنے سے لے کر بیج بونا، پانی دینا، درخت اگانا، اس کی دیکھ بھال کرنا، یہاں تک کہ آخر میں پھل حاصل کر لینا. تو جب پھل آپ کو مل جائے، اس مرحلے تک جو پوری تمام سٹیجز ہیں وہ تمام مل کر تزکیہ کہلاتی ہیں. تو پہلی ہے تخلیہ، خالی. اس پر ہم بات کر چکے تفصیل سے کہ ہم نے 10-11 ان میجر صفات کی یا ان کوالٹیز کی بات کی کہ جن سے نفس کو پاک کرنا ضروری ہے، کہ جن میں ہم نے شروع کیا تھا ریاکاری پہ، خود پسندی. اور اس کا مین ریفرنس ہمارے پاس کیا ہے، امام خمینی کی جو کتاب ہے چیل حدیث، شرح چیل حدیث، کہ اس میں ابتدان 10 حدیثیں 2-10 جو ہیں وہ ان تمام صفات پر ہیں کہ جو قابل مذمت ہیں جن سے نفس کو پاک کرنا ضروری ہے. اس کے بعد اب ہم بات کر رہے ہیں تحلیہ پر. تخلیہ کے بعد تحلیہ. تحلیہ کا مطلب کیا ہے، حلیہ. حلیہ آپ سمجھ لیں، یعنی اب آپ نے اپنے نفس کو، السلام علیکم، بری صفات سے خالی کر لیا. اب اس کو کون سا لباس پہنانا ہے، اس کو کن صفات سے، کن کوالٹیز سے آراستہ اور مزین کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس میں ہم نے سب سے پہلے بات کی تھی کہ تفکر ہے، تقویٰ ہے، شب زندہ داری، یعنی اس قسم کے مینلی تفکر اور تقویٰ کی بات کی تھی. اب ہم اس میں جو ان صفات میں آگے بڑھتے ہوئے اب ہم جس صفت کی بات کر رہے ہیں، یعنی جس حدیث کو، حدیث نمبر 16، اس میں دو صفات کی بات کی گئی تھی. اور وہ پہلی صفت جو ہے حریت ہے، آزادی. اس پر ہم نے 2-3 نشستوں میں تفصیل سے بات کی کہ حریت اور آزادی کا کیا مطلب ہے، اور کس قسم کی آزادی ہونی چاہیے ایک انسان کو. اور لاسٹ ٹائم ہم نے جس دوسری صفت پہ بات کی تھی وہ اسی حدیث میں ہی ہے، اور اس کا نام ہے صبر. صبر کے حوالے سے جو تعریف ہے صبر کی، یعنی ڈیفینیشن، اور اس ڈیفینیشن کو سمجھنے میں جو ہماری بنیادی گڑبڑ ہے، پہلے ہم نے اس کو کلیریفائی کیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ صبر سے ہم عام طور سے مراد لیتے ہیں ایک مشکل، پریشانی اور مصیبت کے مقابلے میں یا سامنے بیٹھے رہنا یا شکوا نہ کرنا. لیکن یہ شاید صبر کے حوالے سے انتہائی، مطلب اس کے جتنا بھی صبر کا اسکوپ ہے اس کا 5 یا 10% ہی ہو، یہ والی بات کہ مصیبت اور مشکلات میں شکوا نہ کرنا. सबर की जो बुनियादी तारीफ है, बल्कि सबर जो है एक पूरा मरहला वार काम है। मरहला वार यानी स्टेज वाइज इंसान सबर का मुजाहिरा करता है। और सबर में सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है कि इंसान के सामने एक आला हदफ होना चाहिए। हदफ यानी इंसान के सामने एक डेस्टिनेशन हो, एक गोल हो, एक एम हो, जिसकी तरफ यानी जो आपके सामने एक आला मकाम जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। दूसरा ये है कि इंसान उस आला मकाम की तरफ हरकत करे, मूव करे, बढ़ना शुरू करे। तीसरा ये है कि उस मकाम तक पहुंचने में जो रुकावटें और परेशानियां और मुश्किलात आएं, उन मुश्किलात के मुकाबले में इस्तेकामत का मुजाहरा करें। इन जिस इंसान में ये क्वालिटीज पाई जाती हैं उसको कहते हैं साबिर, और इस सिफत का नाम है सब्र। ठीक है, जैसे इसमें एक रिसाला है, मेरा ख्याल है उर्दू में भी छपा हुआ है, आप लोग देखिएगा, काफ़ी अच्छा है। आयतुल्लाह खामनेई की कुछ तकारीर पढ़ी हैं सब्र पे, छोटा सा एक रिसाला है। उसमें भी उन्होंने साबिर इंसान की जो मिसाल दी है वो दी है कि जैसे एक पहाड़ पर चढ़ने वाला एक शख्स होता है, कोह पैमा होता है, कि जिसकी नज़र में एक बुलंद चोटी होती है जहाँ तक उसको पहुँचना होता है, और उस चोटी तक पहुँचने के लिए फिर वो एफर्ट करता है, मूव करता है, और रास्ते में जितनी भी मुश्किलात और परेशानियाँ आती हैं उनको बर्दाश्त करता है। ठीक है, तो ये है सब्र। जिस इंसान के पास कोई आली हदफ ना हो ज़िंदगी में, वो अगर मुश्किलात और परेशानियों को बर्दाश्त करे, खुदा की बारगाह में वो साबिरीन में नहीं शामिल है। ठीक है, ये बहुत क्लियर बात है कि अगर हमारे सामने कोई हदफ नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, कोई मकाम नहीं है जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं, और हम बस बैठे हुए हैं जी, हम मुसीबत बर्दाश्त कर रहे हैं, ये इंसान दीन की और खुदा की तारीफ में ये साबिर नहीं है। सब्र के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो एक आली हदफ है, हायर गोल और एम और डेस्टिनेशन है, ऑब्जेक्टिविटी है। ठीक है, ये सब्र की तारीफ है। अब उसके बाद हमारी गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची थी कि सब्र बुनियादी तौर से हमें अपनी ज़िंदगी में, बल्कि प्रैक्टिकली जब आप किसी भी आला हदफ की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपके सामने तीन मराहिल आते हैं जहाँ पर आपको सब्र करने की ज़रूरत पड़ती है। यानी सब्र करने का मतलब इस्तेकामत दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, स्टेडफास्ट स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत पड़ती है। वो क्या है कि नंबर वन, आपको जब आप एक आला हदफ की तरफ बढ़ते हैं तो आप आला हदफ की तरफ पेशकदमी नहीं कर सकते जब तक अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी ना करें। ठीक है, यानी जब कोई इंसान अगर खुदा की फरमाबरदारी ना करे, मिसाल के तौर पर इबादत अंजाम ना दे, जिन कामों को से दूर रहने को या बुरे अखलाक से दूर रहने का खुदा ने हुक्म दिया उससे दूर ना रहे, अच्छे अखलाक को ना अपनाए, खुदा की इताअत ना करे, वो कभी भी आला हदफ की तरफ नहीं बढ़ेगा। तो पहला एक रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, अल्लाह की इताअत करना आला हदफ की तरफ जाने के लिए। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि जिन चीज़ों से दूर रहने का खुदा ने हुक्म दिया है, और जो भी इंसान किसी आला मकाम की तरफ हरकत करता है तो शैतान का सबसे बड़ा निशाना वही बनता है। शैतान और शैतानी पूरा निज़ाम सबसे ज़्यादा उसी के पीछे लगता है कि जिससे उसको एक रियल ख़तरा महसूस हो रहा होता है कि ये लोग जो है ना, अगर ये अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे तो मेरे प्लान्स मलियामेट होंगे, मेरे काम ख़राब होंगे। तो सबसे ज़्यादा शैतान जो है यानी मासियत और गुनाह और बुराई और वो सब चीज़ें लेकर उन पर ही हमलावर होता है। तो नंबर टू जो प्रॉब्लम आपको आएगी उस सफ़र में वो ये है कि गुनाहों से, मासियत से, बुराइयों से अपने आप को कैसे बचाना है। और नंबर थ्री जो प्रॉब्लम आएगी वो ये कि मुश्किलात और परेशानी ने ज़िंदगी की सख्तियां भी ज़्यादा उस इंसान के हिस्से में आती हैं जो किसी आला मकसद की तरफ हरकत कर रहा होता है। ये बात आप लोग इससे एग्री करते हैं या मैं एक्सप्लेन करूं इसे? यानी जो इंसान भी आला मकसद की तरफ हरकत कर रहा होता है, ज़िंदगी की ज़्यादा सख्तियाँ, इन्हें ज़्यादा परेशानियों का मुंह वही देखता है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट भी है। बाय डिफ़ॉल्ट से मेरी मुराद क्या है, यानी खुदा ने जो निज़ाम बनाया है वो भी ऐसा ही है कि जैसे इमाम अली अलैहि सलाम ने फरमाया कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सख्तियाँ अम्बिया के लिए हैं, सबसे ज़्यादा परेशानी मुश्किलात सख्तियाँ जो झेली हैं वो नबियों ने झेली हैं, उसके बाद औलिया ने उठाई हैं। तो ये भी खुदा का निज़ाम है कि आप अगर सही रास्ते पर चलने वाले हैं तो दुनियावी सख्तियाँ भी आपके पास आएंगी ज़्यादा। शैतान की मक्कारियों और जो उसके बिछाए हुए जाल हैं जिनमें वो गुनाहों को के ज़रिए से अस्सलाम वालेकुम आपको फंसाना चाहेगा, वो भी आपके ऊपर ज़्यादा हमला होगा। और अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा मुतवज्जह रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से इन द बिगिनिंग जो सब्र है उसके मौके या उसके जो स्कोप हैं या सब्र के जो मवारिद जिसको कहते हैं वो कितने बयान किए गए हैं? 3 बयान किए गए हैं। अस्सब्रु अला अत्ता वस्सब्रु फिल मुसीबा वस्सब्रु अनिल मासिया। सब्र अला अत्ता यानी आप इताअत पर आप सवार होते हैं, इताअत पर हावी होते हैं ताकि उसको अंजाम दें। तो इताअत पर सब्र, मुसीबत में सब्र। में का मतलब क्या है कि क्योंकि मुसीबत आपको चारों तरफ से घेर लेती है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप हर तरफ से ट्रैप्ड हो चुके हैं मुसीबत के अंदर। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने जो वर्ड यूज़ किया सब्र फिल मुसीबा, फी यानी में, मुसीबत में जब मुसीबतें तुमको हर तरफ से घेर लें तब सब्र। والصبر عن المعصية، عن کا مطلب یہ ہے کہ معصیت اور نافرمانی کو اپنے سے دور رکھنے میں صبر، اپنے سے دور ہٹانے میں صبر، ٹھیک ہے۔ تو انسان جب اطاعت پر، کیونکہ اطاعت پر حاوی ہوتا ہے، مصیبتوں میں گر جاتا ہے اور گناہوں کو اپنے سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں ایک بات آپ سے اور بھی عرض کر دوں کہ انسان کا کمال یہ نہیں ہے کہ اس کو گناہوں سے نکالا جائے، بلکہ انسان کا کمال یہ ہے کہ گناہوں سے وہ دور رہے اور دور رکھے۔ جس انسان کو گناہوں میں سے نکالا جاتا ہے یہ کمال نہیں ہے انسان کا۔ جیسے کہ آیہ تطہیر ہے، آیہ تطہیر میں خدا نے یہ نہیں کہا کہ اے اہل بیت ہم نے تم کو گناہوں سے دور کیا ہے، بلکہ لیذھب عنکم الرجس، بلکہ برائیوں کو تم سے دور ہٹایا ہے۔ یعنی حقیقتاً اہل بیت کے لیے کسی رجس اور گناہ کا تصور نہیں ہے، لیکن ہر وہ انسان چاہے معصوم کیوں نہ ہو اس دنیا میں اگر موجود ہے تو برائی اس کی طرف آئے گی۔ تو جنہیں خدا نے مطہر کیا ہے، پاک کیا ہے، وہ کون ہے؟ جن سے خدا نے ہر نجاست اور برائی کو دور ہٹا دیا ہے، یعنی کہ برائی ان تک آ بھی نہیں سکتی، پہنچ بھی نہیں سکتی کوئی رجس اور ناپاکی، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 باتیں، اس پر ہم نے پچھلی دفعہ بات کر لی تھی اور اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک اچھے سے ذرا بات واضح ہو جائے، ٹھیک جی۔ جی اطاعت پر صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی خدا کے حکم کو مان رہے ہیں تو خدا کے حکم کا ماننا ان دا بگننگ ہمیشہ سخت ہوتا ہے۔ یعنی جیسے مثال کے طور پر میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ مثال لی تھی کہ نماز فجر سخت ہے، نماز شب اس سے زیادہ سخت ہے، خاص طور سے سردیوں میں۔ اسی طریقے سے روزے سخت ہیں، گرمیوں کے روزے اور زیادہ سخت ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی جو بھی، اور اگر آپ اپنی اطاعت کی کوالٹی بڑھاتے جائیں، تو مثال کے طور پر اگر خدا نے یہ کہا کہ ہمیشہ سچ بولو سخت ہے، اور صبر کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو سختی آ رہی ہے اوور کم دیٹ، اس پر قابو پاؤ، اس پر اعلیٰ تا یعنی اس پر حاوی ہو۔ ایک چیز جو تمہارے اندر ریزسٹنس، تمہارے سامنے ریزسٹنس بن کے آ رہی ہے کہ نہیں میں یہاں جھوٹ بولوں، फायदा हासिल करूं, लेकिन आपको उसके ऊपर सवार होना पड़ेगा उस अच्छाई के ऊपर। जैसे ना कि एक सरकश घोड़ा है इधर से उधर भाग रहा है, आपको उसके ऊपर सवार होकर उसकी लगाम अपने हाथों में लेनी पड़ेगी कि नहीं जिधर मैं ले जाना चाह रहा हूं उधर चलो। तो यह सख्त है, ठीक है। तो ताअत पर सब्र, मासीयत पर सब्र और मुसीबत पर सब्र। मुसीबत पर सब्र का मतलब यह है कि जो जिंदगी की मुश्किलात, सख्तियां, परेशानियां दरपेश हों, उनके मुकाबले में इंसान शोर शराबा ना करे। और अगर आपको याद है कि मैंने आप पिछली दफ़ा एक हदीस पर बात ख़त्म की थी कि जिसमें सातवें इमाम के पास एक सहाबी थे समाअ इब्ने मेहरान, इमाम अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम हज क्यों नहीं करते, तुमको किस चीज़ ने हद से रोक दिया है। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत मकरूज़ हो गया हूँ, मेरे पास पैसे वैसे नहीं हैं और मैं कर्ज़ा मेरे लिए बहुत परेशान कन बात है, अगर मेरे एक दोस्त ने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाता। तो इमाम ने फरमाया कि इन तस्बिरो तो गुत्ता बेतो, कि अगर तुम सब्र करोगे तो काबिले रश्क हो जाओगे, और अगर सब्र नहीं करोगे तो अल्लाह की तकदीर ख़त्म होने वाली नहीं है, मिटनी वाली नहीं है, चाहे तुम राज़ी हो या नाखुश हो। यानी तुम अगर सब्र नहीं करोगे तो खुदा ने जो कुछ खुदा का प्लान है वो प्लान एग्जीक्यूट होके रहेगा। बाज़ औक़ात उसमें कुछ चीज़ें तुम्हारे लिए नागवार होती हैं, कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं। तो इससे एक बात समझ में आती है। और इन्होंने इसके बाद ये वो भी किया है, इसकी तफसीर भी की है कि फरमाते हैं कि इंसानों के सामने अपनी शिकायतों का इस तरीके से बयान करना कोई काबिल तारीफ सिफत नहीं है। और ये सिफत जो है ना, ये डायरेक्टली मनाफी है, अपोजिट है सब्र के। कौन सी सिफत? के इंसान अपने दिल की तकलीफ या परेशानी जो है, अगरचे के रिवायतों में हमारे पास ये चीज़ मौजूद है कि अगर तुम मुश्किल में हो, परेशानी में हो, तो मोमिनीन के साथ अपनी परेशानी को शेयर करो, या तुम मोमिनीन के साथ अपने मसाइल के हल की बात कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ एक छोटा सा वाकया सुनाऊँ कि अब ये तमाम बातें लेवल्स पर डिपेंड करती हैं, इंसान कौन से लेवल पर रहना चाहता है। कि एक रसूल खुदा के दौर में एक शख्स था, ज़ाहिर है आपके असाब में से ही हो शायद, असाब में से, कि उसके घर में काफ़ी परेशानी, क्योंकि मुसलमानों पर वो जो दौर गुजरा है बहुत सख्ती का दौर गुजरा है, खाना पीना नहीं, घर में तंगी बहुत आ गई। तो वाइफ ने भी कहा, बीवी ने उसकी कहा कि रसूल खुदा से जाके बात करो, अपनी परेशानी बयान करो और शायद वो कुछ कर दें हमारे लिए। तो वो शख्स इस नीयत से गया, चला मस्जिद नबवी की तरफ, और जब वो वहाँ पहुँचा तो रसूल खुदा खुतबा दे रहे थे, और अभी वो वहाँ जाके बैठा भी नहीं था कि आपने एक जुमला इरशाद फरमाया। आपने फरमाया कि जो हमसे अपनी हाजत बयान करता है तो हम उसको अता करते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स खुदा पर तवक्कुल करे तो खुदा उसको गनी और बेनियाज कर देता है। तो वो शख्स कहने लगा कि ये जो जुमला है ना, अभी तो मैंने रसूल खुदा से कुछ भी नहीं कहा, लेकिन ये जो जुमला है ना, ये मेरे ही लिए आपने कहा है। उसने कोई बात नहीं की, वापस आ गया, उठ के वैसे ही घर वापस आ गया बगैर कुछ कहे। फिर परेशानी में एक दो दिन गुजरे, आखिर में उसने कहा चलो क्या करें, कुछ ना करें, उठ के जंगल की तरफ चला गया। वहाँ गया, कुछ लकड़ियाँ वकड़ियाँ जमा की, फिर किसी से कोई कुल्हाड़ी ली, वहाँ लकड़ियाँ उनको लेके बाजार में बेचा। ऐसे एक साइकिल उसकी चल पड़ी और थोड़े दिन बाद उसके हालात काफ़ी बेहतर हो गए, उसका एक कारोबार बन गया। फिर कुछ अरसे बाद वो रसूल खुदा के पास गया तो आपने उसकी तरफ अब देख के कहा कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जो हमसे मांगता है तो हम अता करते हैं, लेकिन जो खुदा पर भरोसा करता है तो खुदा उसे गनी कर देता है। तो ये लेवल्स हैं। ठीक है, ये इंसान के, लेकिन जाहिर है कि इसके लिए सब्र चाहिए ना, यानी जिस इंसान में सिफत सब्र ना हो वो ये काम कर सकता है, नहीं कर सकता। यानी जिस इंसान में सिफत सब्र ना हो, वो दिल में ठहराव ना हो, एक इस्तकामत ना हो, समाई ना हो, तो वो इंसान क्या करेगा, हमेशा जाके फिर दूसरों से ही के सामने ही रोना पीटना करेगा, जिसे कहते हैं जजा और फजा करेगा। और यहाँ पर ये बात बयान फरमाते हैं कि एक बहुत अच्छा जुमला है ये, इसको शायरी में काफ़ी ज़्यादा बांधा गया है इस ख्याल को कि महबूब के हाथ से तकलीफ़ उठाना भी लज्जत है। शायरी में इस ख्याल को काफ़ी वो मैंने बयान किया गया कि तकलीफ़ उठाना बजाते खुद कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर महबूब के हाथ से तकलीफ़ पहुंचती है, महबूब की जानिब से तकलीफ़ पहुंचती है, तो उस तकलीफ़ में भी लज्जत है। वो तकलीफ़ अजियत नहीं है, मूजी नहीं है, ईज़ा रसा नहीं है। तो यहाँ एक जुमला फरमाते हैं कि जो शख्स खुदा और महबूब मुतलक की तरफ से आई हुई एक मुसीबत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब्दुल्ला इब्ने मसूद का ये जुमला है, बहुत बहुत अच्छा। अब्दुल्ला इब्ने मसूद आपको पता है ना, रसूल खुदा के सहाबी थे और अच्छे बुज़ुर्ग सहाबियों में थे, कि जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया तो इनकी हज़रत उस्मान की खिलाफत का दौर था, तो उनको पता चला कि वो बहुत बीमार हैं, तो उनके पास गए और उनकी बेटियाँ थीं कहीं, तो उन्होंने कहा कि बीमारी वगैरह पे ना, जैसे हम कहते हैं उसका कुछ तसल्ली दिलासे वगैरह देते हैं, तो उन्होंने एक जुमला कहा कि हाँ, यानी उस्मान ने ये कहा कि तुम्हारे लिए किसी अच्छे तबीब का इंतज़ाम करूं, तो उन्होंने कहा तबीब नहीं तो बीमार किया है। तबीब नहीं तो बीमार किया है, तो कहने लगे अच्छा फिर कुछ वसीयत कर दो कि तुम्हारी बेटियां या उनके लिए कोई खबरगिरी वगैरह किफ़ालत के लिए कुछ कर दूं। उन्होंने कहा मुझे तुम्हारी किफ़ालत की हाजत नहीं है, रसूल खुदा ने फरमाया कि जब तुम्हें रिस्क की तरफ से कोई भी परेशानी हो तो सूरह वाकया की तिलावत किया करो। मैंने अपनी औलाद को सूरह वाकया की आदत डलवा दी। ठीक है, ये जो एक क्वालिटी है ना, ये वही सब्र है। ठीक है कि इंसान हत्तल इम्कान अपनी खुददारी को मेंटेन रखे। मैंने खुददारी का मतलब अकड़ नहीं है, अनानियत नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो नुक्ता पोशीदा है वो क्या, जो ये बड़ा खूबसूरत जुमला है कि तबीब नहीं तो बीमार किया है। और यहाँ पर जो ये बात कह रहे हैं कि अगर तुमने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की तरफ से हज़ारों नेमतों को एक्सपीरियंस किया, तुम सर से पैर तक खुदा की नेमतों में डूबे हुए हो, लेकिन अगर तुम्हारा ईमान इस बात पर है कि ज़िंदगी में हर चीज़ मन जानिब अल्लाह है, तो एक या दो तकलीफ़ें जो हैं तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं और तुम खुदा के सिवा दूसरे के सामने ज़बान खोलने पर आमादा हो गए। इन्हें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जुमला है सूरह यूसुफ में कि इन्नमा अश्कू बफ़ी व हुज़्नी इलल्लाह, मुझे तकलीफ़ है, मुझे रंज है, लेकिन मैं अपने गम और रंज की शिकायत करता हूँ, अश्कू बफ़ी व हुज़्नी इलल्लाह, अल्लाह की तरफ, लोगों से नहीं करता, किसी और से बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, खुदा से ज़रूर अपना हाल दिल बयान करूँगा, खुदा से ज़रूर अपने परेशानी और मुश्किलात की शिकायत करूँ। तो ये फरमाते हैं कि जो ये यानी ये जिस इंसान की हालत हो तो उसका क्या ईमान है, फिर वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूँ, कि ज़िंदगी में एक दो मुश्किलात आ गई, परेशानियाँ आ गई और आपकी ज़बान खुल गई शिकायत में किसी और के आगे, बंदों के आगे, मखलूकात के आगे। तो ये बातिनी इज़्तिराब, ज़बानी शिकायतें, आज़ा व जवारे की गैर आदि हरकतें, यानी हमारी हैबिट ही बदल गई, हमारे तरीके ही बदल गए, अब मुश्किलात की वजह से कि हम अपने नॉर्मल से एबनॉर्मल बिहेवियर की तरफ आ गए। ये सब के सब गवाह हैं कि हम अहले ईमान नहीं हैं, ठीक है। और इसमें एक और बात भी है कि जो अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलाम में सब्र को एक और सिफत के साथ डायरेक्टली रिलेट किया गया है, वो कौन सी सिफत है? शुक्र। के जैसे रसूल खुदा ने फरमाया कि ईमान के दो हिस्से हैं, आधा निस्फ सब्र निस्फ शुक्र, आधा ईमान शुक्र है आधा ईमान सब्र है। तो जो इंसान इस आदत का हामिल होता है कि थोड़ी सी जिंदगी में कोई परेशानी आई तकलीफ आई और उसकी जबान से यानी जो तीन बातें बयान की कि बातिन में इज़्तिराब हो जाए, जबान पर शिकायतें आ जाएं और आज़ा व जवारेह के जो हरकतें हैं वह एबनॉर्मल हो जाएं, ठीक है। यानी इंसान का रिस्पॉन्स क्या हो मुश्किलात में कि बातिन मुज़्तरिब हो, सोच दिमाग फिक्र किसी तरफ फोकस नहीं हो पा रही है, बिल्कुल डिवास्टेटेड फ्रॉम इनसाइड। जबान पर जो है वो शिकायतें अपनी हालत मुसीबत परेशानी सबसे बयान हो रही है, और इवन हमारे आज़ा और जवारे की जो हरकतें हैं वो क्या हो जाएं, एबनॉर्मल सी हो जाएं। तो ये इस बात की गवाह हैं कि हम अहले ईमान नहीं हैं, यानी सब्र नहीं है। और ये शख्स शुक्र भी खाली उस वक्त ही करेगा जब उसको नेमत मिल रही होती है, कि जब तक नेमत मिल रही होती है जाहिरन शुक्र करते हैं मगर वो भी बेमगज। बेमगज का मतलब है ना उसके पीछे कोई मारिफत नहीं होती है, उसके पीछे कोई खुलूस नहीं होता है, बल्कि हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और ये जैसा मैं आप लोगों से पहले बयान कर चुका हूँ कि उस आयत का जो हम थोड़ा ऑफ द वे तर्जुमा करते हैं लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, यानी इसका तर्जुमा जो हम ये करते हैं कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे खुदा का तो तुम पर हम नेमतों को ज़्यादा कर देंगे, इसके जबकि इसका तर्जुमा ये नहीं है, लअज़ीदन्नकुम यानी यकीनन हम तुमको ज़्यादा करेंगे। कि शुक्र खुदा का नतीजा है इंसान की ज़ात में ग्रोथ, ठीक है, इंसान की पर्सनालिटी में ग्रोथ और उसका हाई लेवल पे जाना। आयत ये नहीं कह रही कि नेमतों में, कहीं भी लफ्ज़ नेमत नहीं है यहाँ पे, लअज़ीदन्नकुम। लेकिन हम क्या समझ रहे होते हैं कि अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो माल बढ़ेगा, लज्जतें बढ़ेंगी, एसेट्स बढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ज़्यादा होंगी, तो हमारा शुक्र जो है ना वो भी इस लालच में ही होता है। तो हकीकतन यानि हम मुकम्मल ईमान से महरूम है अगर ये हमारी हालत है, तो यानी ना सब्र है हमारे पास ना शुक्र है, और सब्र और शुक्र जो है ये दोनों बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। जिस इंसान के पास शुक्र की मारिफत होती है, शुक्र की तौफीक होती है, वो इंसान साबिर भी होता है, ठीक है। ये बात वाज़े हो गई। फिर इसमें इसके ज़ैल में कुछ रिवायतें बयान करते हैं कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मन इब्तुलिया मिनल मुमिनीना बिबलाइन फसबरा अलैहि कान लहू अज्र अल्फ शहीद, के मन इब्तुलिया मिनल मुमिनीना बिबलाइन, के अगर मुमिनीन में से किसी को इब्तला में आजमाइश में डाला जाए, फसबरा अलैहि और वो उस बला पर सब्र करे आजमाइश पर सब्र करे, कान लहू अज्र अल्फ शहीद, तो उसके लिए हजार शहीद का अजर, हजार शहीद का अजर है। एक और हदीस काफी में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब मोमिन अपनी कब्र में दाखिल होता है, कानत फलात यमीन ही व जक़ात यसार ही وَالْبِرُّ مُطَلٍ عَلَيْهِ. جب مومن قبر میں جاتا ہے تو اس کے داہنی طرف صلاۃ اور بائنی طرف زکاۃ. لیکن یہ صلاۃ اور زکاۃ کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا سا میں اگر آپ لوگوں سے پوچھوں کہ نیکیاں تو بہت ساری ہوتی ہیں، یعنی عبادات تو اور بھی ہیں، لیکن خالی ان میں صلاۃ اور زکاۃ کا ذکر کیوں ہے؟ مطلب نا آئی ایکسپیکٹ کہ آپ آنسر کریں گے آپ لوگ اس بات کا. ٹھیک ہے، یعنی جو بھی عبادات ہیں وہ بنیادی طور سے دو ہیں، اور اس کو تھوڑا سا ریفائن کر لیجئے کہ صلاۃ کا مطلب تعلق بخدا، اور زکاۃ کا مطلب وہ سب کچھ جو آپ نے خرچ کیا بندگان خدا کی فلاح کے لیے. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا یوں کہ جتنی بھی عبادات ہیں نا وہ سب کی سب ان دو ہیڈنگز میں آتی ہیں. یعنی وہ عبادات کیا ہیں؟ کہ جو بندہ انجام دیتا ہے تقرب الہی کے لیے، وصال خدا کے لیے، خدا سے ملنے کے لیے، ملاپ کے لیے، کنیکشن ڈیولپ کرنے کے لیے، وہ سب کی سب کس کیٹیگری میں چلی جائیں گی؟ صلاۃ. اور وہ اعمال اور عبادتیں جو ہم انجام دیتے ہیں بندگان خدا کی فلاح و صلاح کے لیے، وہ تمام کی تمام عبادتیں چلی جائیں گی کس کیٹیگری میں؟ زکاۃ. تو داہنی طرف صلاۃ، بائیں طرف زکاۃ، اوپر سایہ کیے ہوئے والبر، تمام کی تمام نیکیاں، یعنی حسن خلق اور باقی چیزیں جو نیکیاں ہم نے کی وہ اوپر. اور صبر جو ہے وہ قبر کے ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے. فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ الْمَلَكَانِ اللَّذَانِ يَلِيَانِ مُسَاءَلَتِهِ، اور جب دو فرشتے قبر میں داخل ہوتے ہیں سوال کرنے کے لیے، قَالَ الصَّبْرُ لِلصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْبِرِّ، تو صبر جو ہے تینوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، دونکم صاحبکم فإن عجزتم منه فأنا دونه، کہ تمہارا صاحب، یعنی آؤ اور اپنے صاحب کی مدد کرو. سوال کا موقع سخت ہے، آؤ تم تینوں، آؤ جن تینوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے، آؤ اور اپنے صاحب کی مدد کرو. اور اگر تم عاجز ہو گئے اس کی مدد کرنے سے تو پھر میں آگے آؤں گا. ٹھیک ہے، اسی لیے یعنی کہ جو صبر کی حقیقت ہے نا وہ آسان نہیں ہے. کہ اگر آپ اس چیز پر دیکھیں کہ یعنی ہم خود اگر اس کو دیکھیں کہ ہم کتنی گناہوں سے صبر کر پاتے ہیں، صبر عن المعصیہ یا صبر عن الطاعۃ یا فی المصیبہ، یعنی کتنا کر سکتے ہیں، تو صبر ایک کمال ہے. اچھا، اب اس میں جو تین وہ ہیں کہ الصبر عند المصیبہ والصبر على الطاعۃ والصبر عن المعصیہ، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ روایت ہے امام علی علیہ السلام جو رسول خدا کو نقل کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو مصیبت پر صبر کرے، حتی یردہا بحسن عزائہا، یعنی صبر کو یا عزا کو یا مصیبت کو بہت اچھے طریقے سے لوٹا دے. اس کا مطلب شاید یہ ہو سکتا ہے، یعنی عزا کو یا مصیبت کو لوٹا دے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو مصیبت آتی ہے وہ اس لیے آتی ہے کہ آپ کو عزادار بنا دے. عزادار کا لفظ آپ سمجھتے ہیں نا، یعنی عزادار کا مطلب یہی ہے کہ آپ کیا کرنے لگ جائیں، اپنا نوحہ پڑھنے لگ جائیں، جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ خود اپنا نوحہ، اپنے نوحہ گر ہو جائیں. کہ جو مرزا غالب کا شعر ہے کہ دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں. یعنی ہر وقت وہ دل و جگر کو پیٹنے کی حالت ہے میری، تو میرے پاس اگر مقدر ہو تو ہر وقت ایک نوحہ پڑھنے والے کو ساتھ لے کے چلوں جو ہر وقت لوگوں کو میرا نوحہ سناتا رہے. تو جو بھی مصیبت آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ عزا لے کر آتی ہے. ठीक है, यानी चाहती है कि हम नौहगर हो जाएं। अस्सब्र इंदल मुसीबा का मतलब क्या है कि आप इस नौहगरी और अजादारी वाली कैफियत को लौटा दीजिए और अपनी मारिफत, अल्लाह पर भरोसा, अपने तकवा के ज़रिए से आप इस मुसीबत और इसकी जो ये दो टेंडेंसीज हैं, अज़ा और नौहे वाली, इसको आप रद्द कर दें, पुरसकून रहें, खुश रहें, ठीक है। और यानी कि जैसे मैं आपको उरफा वगैरह के भी तमाम वाक़यात सुना चुका हूँ, बहुत दफ़ा उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है, हमारे ही दौर के लोग हैं ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह, कि जिन्होंने बड़ी बड़ी मुसीबतें उठाने के बावजूद भी उनके अमन व सुकून और इत्मीनान में फ़र्क नहीं आता था। तो इसको इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कतबल्लाहु लहू ثلاثمئة درجة, उसके लिए खुदा 300 दर्जात करार देता है, और एक दर्जे से दूसरे दर्जे के दरमियान इतना फासला है जितना ज़मीन और आसमान के दरमियान फासला, 300 levels 300 दर्जात। उसके बाद वमन सबर अलत्ता, जो इताअत पर सबर करे, उसके लिए अल्लाह लिखता है 600 दर्जात। मा बैन दरजते इला दरजते कमा बैन तुखूम अर्ज़ इला अर्श, 600 दरजात उसके लिए हैं जो इताअत खुदावंदी पर सबर करे, और इन में से हर दर्जे के जो गैप है वो ज़मीन से लेकर अर्श तक है, दर्जे का फासला। और आखिरी कौन सा रह गया, सबरा अनिल मासिया, मासियत पर सबर, तो उसके लिए खुदा 900 दर्जात लिखता है, कि जिनमें से एक दर्जा जो है वो ज़मीन की जड़ से लेकर अर्श की इंतहा तक है, ठीक। तो इससे हमें कम से कम ये एक दर्जाबंदी समझ में आ गई कि जो मिनिमम एक्सपेक्टेड सब्र है मोमिन से वो कौन सा है, मुसीबत वाला सब्र, मुसीबत और परेशानी वाला सब्र। यानी खुदा इस बात को अपने बंदे से तवक्को रखता है कि मेरा बंदा जब भी अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात में मुब्तला होगा तो मेरे सिवा अपनी परेशानी की शिकायत दूसरों से नहीं करेगा, या अगर बहुत ज़्यादा भी नीचे आया तो मोमिनीन के से आगे नहीं जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि हर कसो नाकस हर एक के सामने आहोबा वाला करें। अच्छा, उसके बाद फिर इताअत पर सब्र, जैसे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि इताअत पर सब्र आसान नहीं है, और स्पेशली यानी कि जब आप इताअत के मामलात को ज़ाहरी इबादात से निकाल कर अखलाकियात तक ले जाते हैं, यानी ज़बान की हिफाजत आसान काम नहीं है कि हमारी ज़बान से हमेशा अच्छे कलिमात अदा हों, या ज़बान जो है वो कभी भी बदगोई से महफूज रहे, बहुत सख्त है ये, यानी इस पर सब्र आसान नहीं है, इस पर इस्तकामत मुश्किल काम है। तो उसी से हमें अंदाज़ा होता है कि ये जो इतने बुलंद दर्जात की बात है, तो ये दर्जात यानी इसकी क्या वजह हो सकती है। एक रिवायत और, ये आखिरी रिवायत है इसमें, फिर मैं थोड़ा सा, मैंने कहा था कुरान की कुछ आयतों से मैं कंक्लूड करूँगा इंशाल्लाह, जो यहाँ नहीं है, लेकिन सब्र पर एक दो बातें कुरान से, कि इमाम अलैहिस्सलाम, छठे इमाम फरमाते हैं कि अनकरीब इंसानों पर ऐसा ज़माना आने वाला है कि ला युनालु फीहिल मुल्क इल्ला बिल क़त्ल व तजब्बर, कि मुल्क और सल्तनत बग़ैर कत्ल और जबर के हासिल नहीं होगी किसी को, वलल गना इल्ला बिल ग़स्ब वल बुख़्ल, अगर कोई गनी होना चाहता है तो उसके लिए उसे गासिब और बखील होना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं मिलेगा, यानी जब तक दूसरों का हक नहीं खाएगा, यानी छीनेगा नहीं, गस्प नहीं करेगा और दूसरों का हक देगा नहीं, बुखल नहीं करेगा, उस वक्त तक वो गनी यानी दौलतमंद नहीं हो सकता। वलल मोहब्बत इल्ला बिल बेइस्तिखराज दीन व तबाइल हवा, और मोहब्बत यानी लोगों की मोहब्बत उस वक्त तक नसीब नहीं होगी जब तक वो अपने दीन को खुदा हाफिज न कह दे और ख्वाहिशात की पैरवी ना करे, तब तक लोगों की नज़र में महबूब नहीं होगा। यानी जो दीनदार शख्स है, जो अल्लाह की इताअत पर कायम रहने वाला शख्स है, जो सही रास्ते पर रहने वाला शख्स है, लोग उससे दूरी इख्तियार करेंगे। और अगर लोगों की मोहब्बत को जल्ब और जज्ब करना है तो दीन से बाहर जाओ, दीन की हदूद से बाहर जाओ, यानी हराम में दाखिल हो और ख्वाहिशात की पैरवी करो। फमन अदरक ज़ालिक ज़मान, जो इंसान ऐसे किसी ज़माने को पा ले, दर्क कर ले, फ़सबरा अलल फ़क्र वहुवा यक़दरु अलल ग़िना, और फिर उसके बाद वो फ़कीरी पर सब्र करे जबकि गनी होना उसके लिए पॉसिबल हो। लेकिन गनी होना कैसे पॉसिबल है? किसी का हक खाए या किसी का हक रोके, वो कहे नहीं मुझे ये काम नहीं करना, मुझे फ़कीर होना मंजूर है। जो सब्र करे फ़कीरी पर इस हालत में कि वो गनी होने पर मकदूर कुदरत रखता है, व सब्र अलल बिग़्ज़त वहुवा यक़दरु अलल महब्बा, और इस बात पर राज़ी हो कि लोग भले से मुझसे नाराज़ होते हैं, नाराज़ रहें, मुझे ख्वाहिशात की पैरवी करके और दीन से निकल कर लोगों की मोहब्बत नहीं चाहिए। वसबरा अला ज़ुल्ल वहुवा यक़दरु अला अल-इज़, और वो ज़िल्लत पर सब्र करे जबकि उसको इज़्ज़त मिल सकती है ज़ुल्म व जबर से। आताहुल्लाहु सवाब खम्सीन सिद्दीक़न मिम्मन सद्दक़ बी, अल्लाह उसको 50 सिद्दीकीन का अजर इनायत करेगा जिन्होंने मेरी रसालत की तस्दीक की। तो अब यहाँ पर जिसे हम कहते हैं सब्र क्या होता जा रहा है, सब्र का जो पैमाना है ना गर्म होता जा रहा है। अब यहाँ पर अब इस सब्र को हाथ में लेना मुश्किल है। अब यहाँ जिस सब्र की बात की कि इंसान दौलतमंदी को गनी होने को ठोकर मार दे और मजबूरी और मोहताजी को कबूल कर ले, क्यों? इसलिए कि किसी पर जुल्म नहीं करूँगा, ठीक है। यानी इसकी सबसे बड़ी मिसाल कौन है हमारे सामने? अगर मैं आपसे पूछूं, इमाम अली अलैहिस्सलाम, खुद इमाम अली अलैहिस्सलाम है। हाँ, नहीं उसमें यानी इसकी जो बात है कि अगर आप उसको देखें, और आई थिंक नहजुल बलावा में खुतबा 91 है कि जहाँ पर यह बयान हुआ कि जब सब लोग तीसरी खिलाफत के बाद पूरा मजमा बनकर आपके पास आए थे और आपसे कहा कि आप कबूल करें खिलाफत को, हुकूमत को, आपने मना कर दिया था कि नहीं मुझे तुम पर हुकूमत करने से कोई दिलचस्पी नहीं है, कई जुमले भी जो हैं आपके, और आपने फरमाया कि अगर मैं कबूल करूँगा तो सिर्फ इसलिए कबूल करूँगा कि मज़लूम को ज़ालिम से हक दिला दूँ और माशरे में अदल व इंसाफ को नाफिज करूँ, ठीक। और अगर तुम्हें ये चीज़ कबूल नहीं है तो जिस तरीके से मैं पहले तुम्हारा मुशीर था अभी भी तुम्हारा मुशीर रहूँगा, यानी ये नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा कि। और ये भी एक बहुत बड़ा सबक है कि अगर इज्तिमा आपका हक भी खा जाए, आपको मजलूम बना दे, तब भी आपको सोसाइटी को माशरे को छोड़ना नहीं है। यानी ये नहीं कि उनको आप कहें कि तुम पर लानत फिटकारो मैं जा रहा हूँ, ये नहीं, इमाम अली ने ये नहीं किया। 25 साल तक आपको आपके हक से महरूम रखा गया, लेकिन उस दौरान में आपने क्या किया, जो हुक्मरान थे उनको प्रॉपर एडवाइस दी हमेशा और अवामुन्नास की भलाई के लिए काम किया आपने। यानी आपने बहुत सारे बागात लगाए, खेत उगाए, ये सब चीज़ें की मदीना के अतराफ में, इन्हें सोसाइटी को बेहतर बनाया इकोनॉमिकली, और जो भी हुक्मरान थे हमेशा उनको अपनी विजडम से, अपनी हिकमत से उनकी रहनुमाई की। ये नहीं बीच में बात आड़े आई कि तुमने मुझे मेरे हक से महरूम कर दिया तो जाओ। ये एक बहुत बड़ा सबक है। तो आपने फरमाया कि अगर तुम्हें ये कबूल है कि मैं इज्तिमा में अदालत को नाफिज करूं और मजलूम को जालिम से उसका हक दिलाऊं, और इसमें तुम्हें कोई रोक परेशानी नहीं है, तो मैं कबूल करता हूं हुकूमत को, वरना जैसे चल रहा था चलेगा। उन्होंने कहा नहीं, आप बने खिलाफत कबूल करें। पहले ही शुरू में, इन द बिगिनिंग, कि वो हजरात जो अशरा मुबशरा में से थे, मैं नाम नहीं लेता, आप समझ भी जाएंगे, और वो पिछली खिलाफत में जो तारीख के जुमले, और ये शहीद मुताहरी ने इसको पढ़ा है, कि जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा जो इनकलाब आया है उसमें ये हमारा नंबर वन एम है, जो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपना अपने गोल्स में से करार दिया था कि अगर हमारा इनकलाब इसको नहीं नाफिज कर सका तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अदालत इज्तिमाई जो शुरू हुआ, वो हजरात पिछली खिलाफत में कितना वजीफा ले रहे थे बैतुल माल से, 10,000 दिरहम, पता नहीं किस बात के। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जो पहली दफा उनको दिया है 3 दिरहम, और जितना उनको दिया है उनके बराबर खड़े हुए उनके गुलाम को भी उतना ही दिया है। तो फिर जंगे जमल होना थी ना, फिर तो लोगों का हक बनता था ना कि फिर वो जंग बरपा करें। और ये एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हो सके। तो ये सब्र, ये सब्र है, ठीक है, ये सब्र के जुमरे में ये बात आ रही है। अब उन्होंने एतराज किया कि ये मैं तो पिछले इतना मिल रहा था मुझे, मेरा मैंने मेरी इस्लाम के लिए इतनी खिदमात हैं, मैंने दीन के लिए इतना सब कुछ कुर्बानियां दी, मैं और मेरा गुलाम बराबर हो जाए और इतना कम। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, तुमने जो कुछ किया वो खुदा के लिए किया था, तुम आखिरत में खुदा से अजर लेना उसका, लेकिन दुनिया में जब हक मिलेगा तो उसमें मुसलमानों के दरमियान ये तफरीक नहीं होगी। तुम्हारी अगर कोई मानवी फजीलत है, तुम्हारी और कोई कमाल है, वो महफूज है, और उसके दरजात, उसके नताइज तुम आखिरत में पाओगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया में ज्यादा माल बटोरो, इसको बुनियाद बनागे। तो ये जो सब्र है ना, कि जिसमें से आप जबर ख़त्म कर दें, जुल्म ख़त्म कर दें, कामिल अदालत को नाफिज कर दें, ये किससे बर्दाश्त होना है बता, कौन कबूल करेगा। और यहीं पर आके जैसे मैंने कहा था ना कि ये जो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब सब्र का पैमाना रियली हॉट हो गया है। अब ये वो सब्र नहीं है खाली मुसीबत इताअत और मासीयत वाला, अब ये सब्र बहुत गर्म हो गया, अंगारे की मानिंद हो गया है। इसको हाथ में लेना बहुत मुश्किल है कि इंसान, और फिर हम लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल है। देखें, हम नहीं कर पाते यहाँ पे सब्र कि हम अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लो कर दें। हम कहें नहीं, मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं करूँगा, किसी का हक नहीं खाऊंगा, या अगर मिसाल के तौर पर जिन जिन लोगों का खुदा फरमा रहा है वह आते वल क़ुरबा हक़्क़हू वल मिस्कीन वबन सबील, अपने कराबतदारों को उनका हक दो, क्या हम इस बात की तवज्जो रखते हैं कि मेरे रिश्तेदारों में से या कम से कम करीबी रिश्तेदारों में से कोई भूखा ना रहने पाए, तवज्जो रखते हैं? आमतौर से हमारी तवज्जो नहीं जाती, हमारी तवज्जो किस बात पे जाती है कि हमारे अपने घर में किसी नेमत में कमी वाकई ना हो। तो ये तमाम की तमाम बातें यहाँ पे, सब्र सख्त हो जाता है। फिर आखिर में फरमाते हैं, एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, अहले मारिफत के दराजात सब्र, जो बात मैं अभी आपसे कह रहा था ना, वही बिगिनिंग में इमाम खुमैनी वाली के लेवल्स हैं, ठीक है। अब जो अब तक जितने सब्र की बात हो रही थी, ये वो सब्र है कि जो आम लोगों के लिए कि उन्हें जैसा साबिर होना चाहिए, लेकिन जो अहले मारिफत का सब्र है वो डिफरेंट है। और ये फरमाते हैं कि वो सब्र जो है वो फिल्ला है, माअल्ला है और आयनिल्ला है। फिल्ला, माअल्ला और आयनिल्ला। फिल्ला का मतलब ये क्या है कि जब इंसान खुदा की तरफ हरकत करे, खुदा की तरफ हरकत करे, तो खुदा की वजह से हर एक को छोड़ दे और इस छोड़ने पर सब्र करना, ये सब्र फिल्ला है। ये नहीं, ये अहले सुलूक का सब्र है। दूसरा सब्र जो है वो सब्र माअल्लाह है। माअल्लाह का मतलब क्या है कि जब इंसान खुदा तक पहुंच जाता है, उसके सामने अनवार इलाही की तजल्लियात नमूदार होना शुरू हो जाती हैं, उनको बर्दाश्त करना आसान काम नहीं है। यानी उसके लिए कल्ब में इतनी अजमत पैदा करना कि उन तजल्लियात को बर्दाश्त कर सके। आपको शायद याद होगा, शेख मोहम्मद तकी आमोली ने एक वाकया बयान किया था कि मैं मस्जिद सहला में था, है ना, मस्जिद सहला में मैं शब जुमा को ख़ास तौर से वो आमाल अंजाम दे रहा था कि मैंने इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को उनकी नूरानी हालत में देखा, जिस्मानी हालत में नहीं, नूरानी हालत में। और इमाम जब मुझसे करीब होना शुरू हुए तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी जान खिंच के उधर चली जाएगी, लाइक ए मैग्नेट, इन्हें कि जैसे एक मैग्नेट है और मेरी जान जो है वो लोहे की, लोहे के टुकड़े की तरीके से कि इधर से निकल के खिंच के उधर से चिपक जाएगी। तो मैंने बेख्तियार हाथ उठा के कहा कि खुदा मेरे करीब और करीब ना हो। ये कौन सा सब्र है? ये सब्र माअल्लाह है। यानी जब अनवार इलाही की तजल्लियात मुशाहिदे में आना शुरू हो तो उनको बर्दाश्त करने की ताकत, ठीक है। यानी जैसे मिसाल के तौर पर कि अगर हम 10,000 वोल्ट का तार ले लें हाथ में, क्या असर होगा हमारा? ये वो चीज है, ठीक है। और तीसरा जो सब्र है उसके बारे में एक सूफिया का एक वाकया भी बयान करते हैं और दुआए कुमैल का भी एक जुमला है फिर, के शिबली एक सूफी थे, एक जवान ने जो कि मुहिब्बीन में से था, यानी अहले मोहब्बत में से था, उसने शिबली से पूछा सब्र के बारे में कि कौन सा सब्र सबसे ज्यादा सख्त है, अय्यु सब्र अशद्द, कौन सा सब्र सबसे ज्यादा शदीद है। उन्होंने कहा अस्सब्र लिल्लाह, अल्लाह के लिए सब्र। उसने कहा नहीं, फिर उन्होंने कहा अस्सब्र बिल्लाह, यानी अल्लाह की बिना पर सब्र या अल्लाह के साथ सब्र। उसने कहा नहीं, फिर उसने कहा शिबली ने अस्सब्र अलल्लाह, अल्लाह पर सब्र, अलल्लाह यानी खुदा तक पहुंचने पर। फिर उसने कहा नहीं, फिर उन्होंने कहा अस्सब्र फिल्लाह, उसने कहा नहीं। तो उसने कहा कि फिर वाय हो तुझ पर, वो कौन सा सब्र है जो सबसे ज्यादा सख्त है? उसने कहा अस्सब्र अनिल्लाह, अल्लाह से सब्र। अल्लाह से सब्र का क्या मतलब हुआ कि जब बंदे को तजल्लियात इलाही नसीब हो जाती हैं, उसके बाद वो हुक्म खुदा की बिना पर मखलूकात के दरमियान आए। समझ में? लेकिन उन्होंने कहा है कि अब इससे ज्यादा मैं बात करूंगा भी नहीं, बहुत बहुत ज्यादा हो गया। बात समझ में आई? जब आप महबूब की तजल्लियात कुल्लन पूरी नूरानियत के साथ आप रिसीव करने के काबिल हैं। और फिर उसके बाद महबूब कहे कि जाओ मेरे गैर के पास, कैसा लगेगा? अरे सुन, यानी उस वसल, उस मकाम में वसल से आपको कहा जाए जाओ, हालत हिजर में चले जाओ। वसल और हिजर पता है ना, उम्मीद करता हूँ इतनी शायरी तो पढ़ी है ना आप लोगों ने। वसल और हिजर यानी जब आप हालत विसाल की पीक पर हो और उस वक्त आपसे कहा जाए कि जाओ हालत हिजर में चले जाओ। रसूल खुदा क्या फरमाते हैं, मैं एक दो छोटी छोटी बातों से आपको उसको वो कर दूं कि रसूल खुदा फरमाते हैं अभी तो عند ربي يطعمني ويسقيني, मैं रात अपने रब की बारगाह में गुजारता हूँ, अपने रब के साथ गुजारता हूँ रात, और वो मुझे खिलाता और पिलाता है। रात इस हालत में गुजरती है, दिन को खुदा कहता है जाओ अबू जहल अबू लहब अबू सुफियान जैसों के साथ दरमियान जाओ और तबलीग करो। आपको समझ में आ रहा है? ये है अस्सब्र अनिल्लाह, यानी खुदा की उस नूरानियत की फील्ड में गर्क होने के बाद हुक्म खुदा से उससे निकल के ऐसों के दरमियान आएगा। खुदा से सब्र, तो वह कहता है सबसे सख्त ये। और फिर इसके बाद यहाँ भी उन्होंने खाली एक सफ़े में ये सब कुछ बयान कर दिया और क्या इससे ज़्यादा जो है वो हमारी मतलब उससे भी कैपेसिटी से भी बाहर है और बयान का भी कोई फ़ायदा नहीं है। एक वाक़या भी मैं आपको सुना दूँ, सैयद जमालुद्दीन गुलपायगानी, नाम सुना है आपने? ये भी एक बड़े बुज़ुर्ग उरफ़ा में से एक थे। इनके एक शागिर्द बयान करते हैं कि मैं एक दिन ये जा रहे थे बाहर निकले, मैं इनके पीछे जा रहा था, और यानी किस लिए मैं इनके पीछे हो लिया, ये शायद दर्स वगैरह ख़त्म करके उठे बाहर निकले, एक बेहतरीन खुशबू आ रही थी उस्ताद के या आगा के बदन से, वजूद से बेहतरीन खुशबू आ रही थी। मैं उनके पीछे पीछे चलता चला जा रहा था। थोड़ी देर बाद जाने के बाद क्या हुआ कि कोई और शागिर्द आया, उसने उनसे हाथ मिलाया, मुसाफहा किया और चला गया। देखा खुशबू ख़त्म हो गई। तो मैंने उनसे पूछा कि या हज़रत, ये इतनी अजीब बात मैंने महसूस की है कि आप अभी चल रहे थे मतलब उस दर्स से और उससे आप उठे थे और जा रहे थे, आपसे इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, और अभी वो शख्स से आए मिला और ये मुझे समझ भी नहीं आया कि आपने फरमाया कि माशरत का ये नतीजा है। तो लेकिन जाहिर है कि ये मकामात हमारे उससे बहुत आगे के मकामात हैं, ठीक है। और इसीलिए फिर इनकी यानी इशारा करने के बाद उसकी कोई तफसीर और तशरीह बयान नहीं की है, थोड़ी सी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दी कि खुदा अगर हमें तौफीक दे तो हम यहाँ तक पहुँचें। अच्छा टाइम अब कहाँ तक पहुँचा, कितना वक्त है? अच्छा फिर अगर आप लोग इजाज़त दें तो नमाज के बाद हम इंशाल्लाह 15 मिनट और।
जी एक सवाल छोटा सा पूछ सकते?
जी जी बोलिए।
ये जो जुमला भी आपने जो वाक्य सुनाया, उन्होंने कहा वाय हो तुम पर, वाय से क्या मुराद है?
वाय होगा मतलब है कि जैसे हम कहते हैं ना कि क्या किस मुसीबत में डाल दिया, क्या मुसीबत है, यानी कि तूने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया जो जवाब मैं दे रहा हूँ तुम कह रहे हो नहीं,
मतलब ये क्या मतलब इमोशंस क्या शो करता है, मतलब है बेजारी आवाजारी या बुरा कह रहे हैं?
नहीं बेजारी की बात नहीं है, बल्कि एक इंसान जो है ना जैसे एक परेशान हो के कोई अपने सर पे हाथ मारे ना, हाय वाय के भाई क्या, हाँ कि किस मुसीबत में मुझे फंसा दी मेरी जान। हाँ यानी कि वो जो भी जवाब दे रहे थे वो कह रहा था नहीं,
या एक स्टाइल होता है, कहता है अभी तुम्हें बता दूँ।
नहीं इसमें जो बात ये होती है ना कि आप इसको यूं समझ लीजिए कि जो अहले मोहब्बत होते हैं और जो अहले मारिफत होते हैं उनके पास वो तकल्लुफात नहीं होते जो हम अहले दुनिया के पास होते हैं। तो इसलिए आपको बाज़ औक़ात इस किस्म की चीज़ें मिलती हैं कि जो एक बहुत ही ब्लंट और बोल्ड एक्सप्रेशन होता है, इसमें कोई वो नहीं होती, यानी तौहीन नहीं होती, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं होती है, बल्कि एक जिसे कहते हैं ना कि मैं जो कुछ अपने दिल की गहराइयों में फील कर रहा हूँ मैं उसको ओपनली एक्सप्रेस कर रहा हूँ, ठीक, ये बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैं ये चाह रहा था कि आज हम सब्र वाले टॉपिक को कंक्लूड कर दें और इसमें कुरान करीम की आयतों से इस्तेफादा करते हुए एक दो अहम बातें, जो बात मैं कुरान करीम से सब्र के हवाले से आपको बुनियादी तौर से याद दिलाना चाह रहा था वो ये कि खुदा ने फरमाया कि इन्नल्लाहु मअस साबिरीन, और ये एक बहुत बड़ी फजीलत है, इन्हें इन्नल्लाहु मअस साबिरीन, मअ का मतलब है साथ साथ, मईयत यानी जिन लोगों में सिफत सब्र पाई जाती है उनके साथ साथ ज़िंदगी में खुदा होता है, ये बहुत बड़ी फजीलत है। और एक और आयत जो कुरान करीम में कई कम से कम तीन मरतबा मेरा ख्याल है ये, और वो है कि सब्र से अपनी ज़िंदगी में मदद मांगो, सब्र से मदद मांगो। इसके लिए पहले मैं आपको वो याद दिला दूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सूरतुल आराफ़ से, इन्हें बहुत ज़्यादा तफसीर में हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये कि आप इसको अच्छे तरीके से एब्ज़ॉर्ब करते जाएँ कि बात क्या हो रही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन का जो मुकाबला हुआ है वो बहुत तवील अरसे तक चला है, काफ़ी उसके स्टेजेस हैं। एक स्टेज वो थी कि जब वो सारे जादूगरों वगैरह को लेकर हज़रत मूसा के मुकाबले में आ गए थे, जादूगर ईमान ले आए, उसके बाद कत्ल कर दिए गए। ये फिरौन और उसके जितने भी कोलैबोरेटर्स थे या एलाइज थे उनके लिए ये एक बहुत बड़ा धचका था, जादूगरों का डिफेक्ट होना, साहिरान का डिफेक्ट होना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस बात पर रिलाई कर रहे थे कि हम जो अब मूसा अपने असा का मौजज़ा दिखा रहे हैं या हाथ का मौजज़ा दिखा रहे हैं, हम इसको जादू के ज़रिए से डिफ़ीट दे देंगे। लेकिन वहाँ डिफ़ीट देना तो दूर की बात, वो जादूगर ख़ुद उसी कैम में चले गए। उसके बाद फिर अब ये आयतें दो तीन में पढ़ना चाह रहा हूँ, وقال الملأ من قوم فرعون, जादूगरों के वाक़े के बाद जो फिरौन की कौम के सरदार थे, चीफ्स थे, लॉर्ड्स थे, उन्होंने कहा कि क्या तू मूसा और उसकी, ने फिरौन से कहा, क्या तू मूसा और उसकी कौम को छोड़ देगा, لتفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك, किस लिए छोड़ देगा मूसा और उसकी कौम को, कि ये ज़मीन में फसाद फैलाएं और तुम्हारे और तुम्हारे खुदाओं को फरामोश करा दें। मतलब ये देखें फिरौन कितने पहले होगा, आज 3,500 साल पहले होगा, एग्जैक्टली सेम हरकतें वही यार जो आज की हैं, वही हरकतें सब, कि जो बेचारी कौम पिस रही है, यानी कि जिसको तुमने इतने बुरे बदतरीन जुल्म और जबर का शिकार किया हुआ है, उसको कह रहे हो कि इन्हें क्या तुम छोड़ दोगे कि ये ज़मीन में फसाद फैलाते फिरें, तुम्हारे खुदाओं का काम ख़राब कर दें, उनको फरामोश करा दें। قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون, फिरौन ने जवाब दिया नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि अनकरीब हम इनके बेटों को कत्ल करेंगे, इनकी औरतों या बेटियों को ज़िंदा रखेंगे, और बेशक हम इन पर गलबा रखने वाले हैं, काहिर हैं, इनके ऊपर हमें कंप्लीट अथॉरिटी हासिल है। यहाँ पर एक जुमला जो मैं कई दफ़ा आप लोगों से कह भी चुका हूँ लेकिन उसका दोहराया जाना बहुत अहम है, कि सनोकतलो अबना अहम, ये वाली पॉलिसी कब आई थी, हज़रत मूसा के पैदा होने से पहले भी आई थी, कि जब उसको ये ख़दशा था कि कोई ऐसा बच्चा आने वाला है बनी इसराइल में जो मेरी सल्तनत को ख़त्म करेगा, तब भी उसने यही कहा था कि इनके बेटों को कत्ल कर दो, इनकी बेटियों और औरतों को जिंदा रखो। और ये जुमला जो है ये हमारे जहन में आम तौर से नहीं आता कि ये फिर उस जादूगरों के वाकये के सेटबैक के बाद दोबारा यही काम शुरू हुआ कि कम्प्लीटली क्रश कर दो इनको, ठीक है। अच्छा, इसमें जो एक अहम बात है कि ज़ाहरी तौर पर मायना यह है कि बेटों को कत्ल करो और औरतों या बेटियों को जिंदा रखो, लेकिन इसका गहरा मायना क्या है कि इनकी मर्दानगी को कत्ल कर दो और इनमें निस्वानियत को बाकी रखो। इन्हें वो तमाम के तमाम रवैये जिनका ताल्लुक मर्दानगी से होता है, यानी क्या शुजात है, हमीयत है, गैरत है, ठीक है, इस्तकामत है, इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक किससे, मर्दानगी से, यानी मर्द से नहीं है। इनफैक्ट ये नहीं समझें कि खाली ये सिफात मर्दों में ही पाई जाती हैं, लेकिन एक मर्दानगी वाली बात, एक शुजात, एक खड़े होने वाली बात, इसको ज़िबा कर दो। और वो जो क्वालिटीज़ यानी इन जनरल जो निस्वानियत में पाई जाती हैं, वो क्या पाई जाती हैं, दुनिया की चीज़ों के पीछे भागना, आमतौर से छोटी छोटी चीज़ों पे परेशान होना, तंग दिल होना, तंग ज़र्फ़ होना, ये भी ज़रूरी नहीं कि ये सिफात खाली औरतों में ही पाई जाती है, लेकिन एक एट्रीब्यूट है। तो इन सब चीज़ों को बाकी रखो, इन सब कामों को बाकी रखो, इन्हें के जैसा जो आज हमारे दौर में भी यही बात है कि जो भी हमारे महकूम हैं या जिन लोगों पर अभी हम हुकूमत कर रहे हैं उनमें शुजाअत, इस्तेकामत, हिम्मत, गैरत, हमीयत, खड़ा होने की सलाहियत, ये कुछ बाकी ना रहे। बस वो खाली यही अपनी दुनिया की छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भागते रहें, वही मिल जाएँ, उस पर खुश हो जाएँ, उसी को अपनी ज़िंदगी का महसल और मकसद करार दें, यूँ ही ज़िंदा रहें, यूँ ही मरें, ख़त्म हो जाएँ, ठीक है। तो ये जो फिरौनियत वाली पॉलिसी है ये फिरौन के जाने से ख़त्म नहीं हो गई है। सनुकत्तलु अबनाअहुम व नस्तहयी निसाअहुम व इन्ना फौकहुम काहिरून, ये आज भी इसी तरीके से बाकी है। और हमें, अगर हम वाकयन अंबिया और औलिया के मकतब के पैरोकार हैं, तो हमें इससे बहुत ज़्यादा अवेयर भी होना पड़ेगा और इसके ख़िलाफ़ फिर हमें बाकायदा मेहनत भी करना पड़ेगी। अब देखें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं इसके जवाब में। पहले तो मूसा नहीं थे जब पहले शुरू हुआ था, अब मूसा हैं अपनी कौम में। उन्होंने कहा लिकौमिस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरू, ये सब्र की एक बहुत खास अहमियत। उन्होंने, आपके दुश्मन ने क्या पॉलिसी अपनी डिफाइन की, बेटों को कत्ल कर देंगे, औरतों को बाकी रखेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, और यहाँ पर ही जैसा मैं बार बार आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ ना कि इन्हीं मकामात पर हमारी और अम्बिया अलैहिस्सलाम की सोच में डिफरेंस पैदा हो जाता है। अगर हमें, हमारा दुश्मन कोई ऐसी बात करें, हम कहें दौड़ो, भागो, असलहे जमा करो, हथियार बनाओ, ये करो, फौज बनाओ, कैसे लड़ेंगे, हमारी सारी तवज्जो उस तरफ चली जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं, इस्तईनु। इस्तईनु का क्या मतलब है, हम हर नमाज में पढ़ते हैं, मदद तलब करना, तलाश करना। यानी अरबी जबान में जिस कलमे में या जिस वर्ड में सीन और ते लग जाए, इस्तईनु, सीन और ते, इसका मतलब क्या होता है, तलब और तलाश। तो असल वर्ड जो है वो इआनत है, इआनत यानी मदद करना, आउन मददगार, इआनत। उसमें सीन और ते लग के इसका मतलब है कि मदद तलब करो, तलाश करो, ढूंढो, यानी अपने लिए सीक हेल्प, मदद तलाश करो। कहाँ से तलाश करो, बिल्लाही वस्बिरू, मदद तलाश करो अल्लाह से और सब्र इख्तियार करो। यानी अपने अंदर किस सिफत को सबसे ज़्यादा इनग्रेंड करो, कायम करो, मजबूत करो, नाफिज करो, सिफत सब्र को। मदद ढूंढो खुदा के पास से और वस्बिरू। लेकिन अब आपको पता है कि वस्बिरू का माना क्या है, वस्बिरू का माना बैठना नहीं है, वस्बिरू का माना जद्दोजहद तर्क कर देना नहीं है, بلکہ وصبرو کا معنی یہ ہے کہ ہر مشکل کو برداشت کرتے ہوئے اپنے عالی ہدف کی طرف بڑھتے رہو. ٹوٹنا نہیں ہے, شکستہ نہیں ہونا ہے, بکھرنا نہیں ہے, گرنا نہیں ہے. اور یہ کس صورت میں پاسبل ہوگا؟ جب تم اللہ سے مدد طلب کرو گے. تمہاری ساری توجہات اس پر نہیں ہوں گی کہ میرے کچھ کرنے سے میرے دشمن کو شکست ہو جائے گی, بلکہ جو بھی مدد آئے گی, جو بھی ہیلپ آئے گی, وہ کہاں سے آئے گی؟ میرے رب کی طرف سے آئے گی, اللہ کی طرف سے آئے گی. ٹھیک ہے, یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, جس میں کس صفت کو کور امپورٹنس حاصل ہے اپنے سے زیادہ قوی دشمن کا مقابلہ کرنے میں؟ صبر. استعین. اور لیکن صبر سے پہلے کیا شرط ہے؟ کہ مدد خدا سے. اچھا, اب اس کے بعد جو ہے نا کچھ ایک دو باتیں اور جو بہت امپورٹنٹ ہیں, اور یہ اس کانٹیکسٹ میں بہت امپورٹنٹ ہیں کہ جو مجاہدہ ہے یا کسی دشمن کے خلاف جہاد ہے. ان الارض للہ. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو حقیقت سمجھا رہے ہیں, ان الارض للہ, یہ زمین کا مالک فرعون نہیں ہے. یہ زمین کس کی ہے؟ زمین کل کی کل اللہ کی ہے, اللہ کے لیے مالکیت اس کی ہے. یورثھا من یشاء من عبادہ, اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے, وراثت دے دیتا ہے. وراثت کا کیا مطلب ہے؟ مالکیت, یعنی حق مالکیت اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. اور اس میں چھپا ہوا ایک میسج اور بھی ہے کہ خدا نے یہ زمین اور اس کی حق مالکیت تم کو دی تھی. کب دی تھی؟ حضرت یوسف کے دور میں تم کو ہی اس مصر کا مالک بنایا تھا. لیکن آج جو تم اس حال کو پہنچے ہو, یہ ساری اپنی نالائقیوں کی وجہ سے پہنچے ہو. لیکن اگر تم اللہ سے مدد طلب کرتے رہو گے, وصبروا, اور صبر کو اپنا پیشہ بنا لو گے, تو یہ زمین خدا کی, یہ فرعون کیا باتیں کر رہا ہے, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, اور ہم ان پر غلبہ رکھتے ہیں اور قاہر ہیں, اس کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن جو اہم ترین بات انہوں نے کی نا, وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ, لیکن اگر تم کو اس زمین کی وراثت مل گئی تو یہ اینڈ آف دا گیم نہیں ہے. یہاں پر آگے تمہارا مقصد حل نہیں ہو جاتا ہے, بلکہ اصل مقصد ہے نیک عاقبت, نیک انجام تک پہنچنا. اور وہ نیک عاقبت جو ہے وہ متقین کے لیے, یعنی فقط تقوی کی بنا پر عاقبت نیک ملے گی. اس کی بنا پر نہیں ملے گی کہ تم فرعون کی جگہ ملک مصر کے مالک ہو گئے, اس سے تمہاری عاقبت نہیں سنورے گی, بلکہ تمہاری عاقبت خیر ہونے کے لیے عاقبت للمتقین. شاید لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی حضرت موسیٰ کی, کیونکہ ظاہر ہے قوم کا معیار ان جنرل اتنا بلند تو نہیں تھا ان کے. انہوں نے یہ جواب دیا, قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, ہمیں تو اذیت ہی اذیت مل رہی ہے آپ کے آنے سے بھی پہلے اور آپ کے آنے کے بھی بعد. یعنی آنے سے پہلے بھی یہی چل رہا تھا, بیٹوں کو قتل کر دو, اور اب پھر یہی شروع ہو گیا کہ ہم تو آپ کے آنے سے پہلے بھی اذیت میں مبتلا تھے, آپ کے آنے کے بعد بھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں, قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم, ہم اس بات کے امیدوار ہیں کہ تمہارا رب جو ہے تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا. ويستخلفكم في الارض, اور اس کے بعد زمین میں تم کو ان کا خلیفہ بنا دے گا, خلیفہ جو بعد میں آتے ہیں. فينظر كيف تعملون, اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات کو اور ہلکا کر دیا, شاید لوگوں کے معیار پہ لے آئے, کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا, تمہیں ان کا خلیفہ بنا دے گا, پھر اس بات کو دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. ٹھیک ہے, یہ ایک بہت بہت اہم نقطہ ہے کہ ہم यानी कि यहाँ पर जो हम बात करना चाह रहे थे वो ये कि सब्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इज्तिमाई कामयाबी के लिए, ठीक है। अगर आप इज्तिमाई कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो उसका अहम तरीन जो जुज़ है वो सब्र है, और सब्र के बाद अगर कामयाबी मिल जाती है तो वो कामयाबी इस बात की गारंटी नहीं है कि आपकी आकिबत खैर है। एक जगह से बस मैं और आपको याद दिला दूं और बात ख़त्म हमारी आज की हद तक। ये सूरह बकरा में है और सूरह बकरा में 152-153 या अय्युहल्लज़ीना आमनू, पीछे तो जो हमने आपको खिताब करके सुनाया था वो हज़रत मूसा अपनी कौम को बता रहे थे, ये खिताब खुदा का मोमिनीन से डायरेक्ट है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलात, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए इस्तईनू मदद तलाश करो, किसके ज़रिए से? सब्र और सलात। यानी अगर तुम्हारी ज़िंदगी में सब्र वाली क्वालिटी नहीं है तो जैसे हमने पीछे पढ़ा ईमान भी बाकी नहीं रहेगा तुम्हारा। और सलात, सलात ज़ाहरी तौर से नमाज लेकिन हकीकी तौर से खुदा से रब्त और ताल्लुक। और इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, यहाँ पर है बेशक अल्लाह सब्र करने वालों की मईयत में उनके साथ साथ है। इसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किसी को याद है कौन सी आयतें? सब्र, सब्र व सलात, इसके बाद वाली आयतें कौन सी हैं? वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवात, ठीक है। यानी हकीकतन जो लोग मक्तूल फी सबीलिल्लाह होते हैं उनकी तारीफ क्या है? मोमिन, साबिर और मुफल्ली या साहिब सलात। और जब इंसान मोमिन होता है, साबिर होता है और खुदा से ताल्लुक रखने वाला होता है, सलात वाला होता है, तो फिर खुदा उसके साथ साथ उसकी ज़िंदगी में मौजूद होता है। और फिर वो लोग जब मक्तूल होते हैं तो मक्तूल फी सबीलिल्लाह होते हैं। बात समझ में आ रही? हर मर जाने वाला या दीन के नाम पर मर जाने वाला भी मक्तूल फी सबीलिल्लाह नहीं है। ये मैंने कहा कि आपको सब्र के हवाले से ना ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट बयानात हैं कुरान करीम में वो दो समझा दूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्र वस्सलात, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए मदद तलब करो सब्र और सलात से। अगर तुम ऐसे हो जाओगे इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह साबिरीन के साथ साथ है। और वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवात, और फिर उसके बाद क्या है? वला नब्लुअन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ वल जू, हम इनको आजमाएंगे खौफ से, भूख से, माल की कमी से, जान के मसाइल से, समरात से। وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ جو کلمہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، قرآن نے کس سے منسوب کیا ہے؟ صابرین سے۔ یہ صابرین کا کلمہ ہے کہ جب ان کو زندگی میں مشکل وقت آتا ہے، مصائب آتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا ترجمہ کیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کا؟
خدا کی طرف سے آئے، خدا کی طرف سے
جی صحیح۔ اور انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، یعنی ہماری پوری زندگی جو ہے وہ خدا کے لیے، اور جب بھی ہمیں پلٹنے کا موقع آیا تو وہ الیہ راجعون۔ ٹھیک ہے، حقیقتاً یہاں پر یہ نہیں ہے کہ خدا سے آئے ہیں، نہیں ہے، جو جملہ ہے یہاں پر وہ انا للہ ہے، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں۔ وہ انا الیہ راجعون، یہ صابرین کا جملہ ہے، ان کو خوشخبری دو۔ اور یہاں پر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہو سکتی، جو اگلی آیت میں آ رہی ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم، وہ لوگ ہیں جن پر صلوات ہے ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت، واولئک هم المهتدون، کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے بڑی عظمت اور اس سے بڑا سرٹیفکیٹ کوئی انسان کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا جس کو کہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہے، اور خدا جس کو کہے کہ میرا صلوات ان کے اوپر ہے، اس سے بڑا درجہ، اس سے بڑا مقام اور اس سے بڑی سند کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صابرین کون ہوتے ہیں۔ میں اس پہ زیادہ نہیں وہ جاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ پھر طولانی ہو جائے گا، اس پر ہم بات کر بھی چکے ہیں پہلے، کہ صابرین کے مقام کا آپ کو اندازہ ہو جائے اور صبر کی امپورٹنس کو آپ سمجھ لیں، کہ اگر یہ صبر والی صفت زندگی میں نہیں ہے تو انسان نہ انفرادی لیول پر نہ اجتماعی لیول پر کسی بھی قسم کی کامیابی اور ہدف کو حاصل کرنا پاسبل نہیں ہے۔ اور صبر کے نہ ہونے کی، اب میں ایک آدھ سوال اگر آپ سے اجازت ہو تو میں پوچھ لوں، کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کسی قوم میں خاص طور سے صبر ہے یا نہیں ہے؟ ابھی ان آیتوں کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ کسی فرد میں یا کسی قوم میں خاص طور سے صبر والی صفت ہے یا نہیں ہے، کیسے پتا چلے گا؟
جو بھی وہ ان کے کام ہوں وہ اللہ کے لیے ہی ہو رہے ہیں۔
جی،
اگر وہ ری ایکشن پہ کام نہیں کر رہے ہیں، ایکشن اپنا جو ان کا ہدف ہے اس طرف وہ بڑھ رہے ہیں وداؤٹ اینی ری ایکشن، وہ صبر کہہ رہے ہیں۔
ری ایکشن سے مطلب
کہ مطلب جو ان کا ہدف ہے اس طرف وہ جا رہے ہیں، کچھ ایسی دشمن کی طرف سے حرکت ہوتی ہے جس کی وہ ری ایکشن کرے جو کہ ہدف سے دور کر دے، اس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ اپنے ہدف پہ ہیں یا ری ایکشن کر رہے ہیں۔
ٹھیک جی، اور کوئی بات صحیح ہے، میں تردید نہیں کر رہا آپ کی بات کی۔ جی، اور کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
انہیں کی بات کے آگے فردر لے کے چلوں گا، یعنی بگر پکچر کے پوائنٹ آف ویو سے قربانیاں جو دینی ہیں اور جو ایم ہے اپنے جو لیڈر ہے جو مطلب جو ان کو فالو کرنا اور اسٹیڈ فاسٹ ہونا اور سارے فیکٹرز ہیں۔
دیکھیں، دو باتیں ہم کو نا ان آیتوں سے اور اس پچھلے ڈسکشن سے بھی سمجھ میں آ رہی ہیں، کہ اگر کسی قوم میں آپ کو شکایت اور آہو واویلا اور فریاد والی کیفیت ملے، انسان میں یا قوم میں، اس قوم میں صفت صبر نہیں ہے، وہ کہیں نہیں پہنچے گی۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات کہ اگر ان کی نظر ظاہری چیزوں سے ہٹ کر حقیقی ہدف پہ نہیں ہے، جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا بھی کہ والعاقبۃ للمتقین، بنی اسرائیل نے کیوں مار کھائی تھی؟ اسی وجہ سے مار کھائی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان کو گہرے مطلب اور پھر اس کو بہت آسان کر کے بتا دیا، دونوں طریقوں سے بتا دیا، لیکن انہوں نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ یعنی ان کی نظر اس بات پر، ان کا خالی مین فوکس کیا تھا؟ فرعون ہٹ جائے، ہماری زندگیاں مادی طور پہ آسان ہو جائیں بس۔ اور بعد میں یہی بات ثابت ہوئی کہ جیسے ہی فرعون ہٹا وہ خود اس رستے پہ چل پڑے، اسی دنیا طلبی کے اور جاہ طلبی کے۔ تو جب تک یہ دو کوالٹیز کسی انسان میں یا کسی قوم میں پائی جاتی ہیں، اس وقت تک ان میں صفت صبر نہیں ہے، کہ ان کے اندر اتنی کیفیت نہیں ہے ابزارب کرنے کی کہ وہ جو کچھ بھی پریشانیاں، مشکلات، مصائب ہیں ان کو ابزارب کریں۔ جیسے ہم، یعنی اگر ہم اپنی پاکستانی قوم کو دیکھیں، ہم اس مسئلے میں ٹوٹلی فیل ہو گئے نا، فیل، کہ ہم پر جو پرابلمز آئیں، جو مشکلات آئیں، اس نے ہم کو आहो वावैला में, शिकायत में, इसमें उसमें मुब्तला कर दिया और हम मैदान में नहीं ठहर पाए, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम यही है कि हमारा ज़्यादातर, और ये चीज़ तो मैंने इतनी देखी, पर हम वहाँ बात भी इस पर बहुत ज़्यादा करते थे कि ख़ास तौर से जब वो सिपाही थापा वाला ज़ोर होता था कि जब उधर से प्रेशर पड़ रहा है तो जनाब मजलिस और इमाम ज़मान और आ जाएं और अलगौस और ये सब चल रहा है, और जहाँ किसी वजह से वो प्रेशर हटा वो वापस वही सब शुरू हो गया, वही सारी हरकतें पहले इमाम ज़मान वगैरह सब भूल गए। यानी अभी भी हमको इमाम ज़मान के लिए रोना क्यों आ रहा होता है? इसलिए कि हमारी दुनिया मुसीबत में पड़ी होती है, और जहां हमारी दुनिया मीठी हो गई चलो खत्म, ठीक है। तो ये दो बातें हमको हमेशा याद रखना है कि अपनी इंडिविजुअल लाइफ में भी और इज्तमाई ज़िंदगी में उसकी अहमियत इंडिविजुअल से ज़्यादा है, क्योंकि मैंने आपको जो आयतें पढ़ के बताई उसके तहत इज्तमाई ज़िंदगी की कोर रिक्वायर्ड क्वालिटी सब्र है। और इस पर अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम ने खुतबाए कासिया में तफसील से बात की है, यही बनी इसराइल और कौमों के उरूज और ज़वाल पर, और वहाँ भी आपने दो सिफात को की करार दिया है किसी भी कौम के उठने या गिरने में, सब्र और इत्तेहाद। और इत्तेहाद होगा ही नहीं कभी भी अगर सब्र नहीं हो, आप गौर कर लें, अगर हर एक जो है वो उसको अपनी अपनी पड़ी हुई हो और हर एक को अपनी मुसीबत का रोना आ रहा हो, कौन मिलेगा आपस में? इंतशार है, तफरीक है। सब्र की क्वालिटी है इनफरादी से ज़्यादा इज्तमाई मामलात को हल करने में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सब्र की बात को ख़त्म किया, मेरी तरफ से ख़त्म नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों का मुझे ख्याल आ रहा है कि देर हो गई काफ़ी, तो अगर स्टिल कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह।
आपने उस आयत के बारे में कहा कि वो जो शहीदों के बारे में वला तकूलू
जी, तो वहाँ पर अच्छा मैं एक बात थोड़ी सी अर्ज कर दूँ कि अगर आप स्ट्रिक्टली कुरान की उसको वोकेबलरी को फॉलो करते हैं तो कुरान की वोकेबलरी जो है वो मक्तूल फी सबीलल्लाह अलग कैटेगरी है और शहदा अलग कैटेगरी है, ठीक है। लेकिन रिवायतों में या वैसे हम उनको भी उनको शहीद कहते हैं जी। हाँ मक्तूल होने वाले, मक्तूल मक्तूल फी सबीलल्लाह, ठीक है। मक्तूल फी सबीलल्लाह तो क्लियर हो गया ना, आयत बता रही है, और इसीलिए मैंने पहले से पढ़ी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलात, के ईमान शर्त है नंबर वन, और ईमान के साथ सब्र और सलात, सलात का मतलब है कि ताल्लुक ब खुदा हो, खुदा से कनेक्ट हो, सब्र वाली कैफियत हो यानी आगे बढ़ रहा हो हदफ की तरफ, उसका मुजाहरा कर रहा हो इस्तकामत का, और ईमान हो। इस हालत में अगर कोई मक्तूल हो जाए तो वो मक्तूल फी सबीलिल्लाह।
मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में या जो भी नेशनल बेसिस पे कौमी पाकिस्तान का नाम ना भी लें तो कौमी बुनियादों के ऊपर जिनका अदब कौमियत होता है वो शहीद हो जाए बज़ाहिर, मतलब हमारे लिए पाकिस्तानी फौज है उसमें लोग शहीद होते हैं बेचारे, तो वहाँ पे तो मोटिवेशनल फैक्टर ही ये वाली आयत को से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो वो एप्लीकेबल नहीं।
देखिए ये कहना बहुत मुश्किल है, कोई नहीं कह सकता। यानी हमारे पास इस किस्म के भी वाकयात हैं कि आप लोगों ने भी सुने होंगे कि रसूल खुदा के दौर में किसी जंग में गजवे में कोई शख्स बड़ी बहादुरी से लड़ाई कर रहा था तो लोगों ने कहा कि क्या ज़बरदस्त मुजाहिद है, और ये आपने फरमाया कि ये जहन्नमी है, वो शख्स कत्ल हो गया यानी गिर गया ज़ख्मी हो के, और जब लोग उसके पास गए और उसको मुबारकबाद देने शहादत की तो उसने कहा तुम क्या बात कर रहे हो, मैं तो फलां कबीले के या उसकी हिमायत में लड़ रहा था, ठीक है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है, यानी कि ये वाली बात देखें हम जितनी भी बात कर सकते हैं ना उसूलों की बात कर सकते हैं, अब उस उसूल पर कौन पूरा उतर रहा है वो खुदा ही जानता है बेहतर, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। यानी कि जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप अपने फौज में मुल्क की फौज में اس لیے لڑ رہے ہیں کہ خدا اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنی عزت اور ناموس اور آبرو اور اپنے گھر کی حفاظت کی جائے، اس نیت سے آپ لڑ رہے ہیں تو بالکل اس کیٹیگری میں آنا چاہیے، اور وہی ایمان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، کیونکہ پہلا تو شرط یہ ہے نا ایمان کے ساتھ، اسی لیے میں نے اس سے پہلی والی آیت آپ کے لیے پڑھی کہ ایمان، صبر اور صلاۃ، اور پھر اس کے بعد خدا نے کہا ان اللہ مع الصابرین، میں ان کے ساتھ ہوں، ان کی معیت میں ہوں، اور پھر کہا ولا تقولوا لمن یقتل فی، تو خدا نے اپنی سبیل کو واضح کر دیا نا کہ میری سبیل کیا ہے، کیونکہ سب سے پہلا سوال یہی ہے نا کہ سبیل خدا میں قتل ہونے والا، اس کے لیے یہ وہ ہے کہ موت نہیں ہے یا باقی سب چیزیں نہیں ہیں. اور جو شہادت والی بات تھی، وہ شہادت والی بات یہ ہے کہ شاہد کہتے ہیں گواہ کو، اور شہید کا مطلب ہے کہ جو بہت مضبوط گواہ ہو. تو شہید کی حقیقی تعریف یہ ہے کہ اس کی زندگی یا موت میں سے کوئی چیز دین کے یا خدا کے حق ہونے پر گواہ بن جائے، یہ شہید کی اصل تعریف ہے. یعنی مقتول فی سبیل اللہ پر شہید کیسے کیوں اپلائی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہر جگہ نہیں ہوگا، کیوں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی جان دے کر یہ واضح کر دیا، گواہی دی کہ دین خدا حق ہے. تو وہ صرف مقتول فی سبیل اللہ نہیں ہے، وہ شہید بھی ہے، گواہ بھی ہے. اس سے زیادہ بڑا گواہ کون ہے بتائیں آپ کو، اس سے زیادہ بڑا گواہ کون ہے، مضبوط گواہ وہ انسان ہے جس کی پوری زندگی اس بات پر گواہی دے کہ خدا اور دین حق ہے، یہ اس سے بڑا شہید ہے. اور اسی لیے جو ہمارے پاس روایتوں کے جملے ہیں کہ علماء کی قلم کی روشنائی شہید کے خون سے افضل ہے، یہ وہ شہید ہے جس کی پوری زندگی اس بات پر گواہی دیتی ہے کہ دین حق ہے، اور اس کی زندگی میں اتنی اس کی روشنائی میں اتنا نور ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگ شہید بنتے ہیں.
یعنی اس کا یہ مطلب ہے شہید ضروری نہیں کہ مقتول بھی ہو.
نہیں بالکل نہیں.
اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو مجتہدین ہوتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں.
منصف کی سب سے بڑی دلیل ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، اس کی سب سے بڑی دلیل جو ہے نا اس بات کی وہ اس پر ہے کہ جو آل محمد کی محبت میں مر جائے نہ کہ قتل ہو. من قتلہ نہیں ہے، من مات علی حب آل محمد.
کیا بات ہے،
مرنا تو ہاں، لیکن زندگی
مطلب وہ ایکسٹریم لیول بتا رہے ہیں کہ اس کے لیے موت آنا ضروری نہیں ہے.
قرآن میں شہید کا ورڈ تو نہیں
ہے نا، بالکل ہے
نہیں، وہ شہید ناٹ ان سینس آف ڈیتھ، مطلب وہ شہادت والا ورڈ، گواہی والا
ہے. شہدا بالکل ہے. آپ کو ریفرنس دوں کہ شہید کی تعریف قرآن نے کیا بیان کی ہے. دیکھیے میں آپ کو آیت اللہ جوادی عملی کا ایک سناتا ہوں، آپ لوگ پلیز اگر بے چین ہو رہے ہوں تو بتا دیجیے گا مجھے، زبردستی نہیں کرنا، لیکن اگر آپ لوگ انجوائے کر رہے ہیں گفتگو کو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آیت اللہ جوادی عملی، کچھ ایسی نجاسات ہیں جن کو پانی کے ذریعے سے پاک کیا جا سکتا ہے، بعض کو سورج کے ذریعے سے پاک کیا جا سکتا ہے، بعض کو مٹی کے ذریعے سے، لیکن کچھ ایسی نجاستیں ہیں جن کو پانی سے پاک کرنا ممکن نہیں ہے، جیسے استکبار، استعمار، خیانت، جھوٹ، یہ کسی بھی مٹی پانی سورج سے پاک نہیں ہوتی. ان نجاسات کو ان میں سے کسی چیز سے پاک کرنا ممکن نہیں ہے جن کا تذکرہ توزیع المسائل میں، بلکہ یہ نجاست شہید کے خون سے پاک ہوتی ہے. ठीक है, ये जो मुनाफ़त और झूठ और बददियानती वाली चीज़ें हैं ना, यानी कि जैसे अभी भी हम देखते हैं कि एक जब ऐसी एक शहादत या एक कत्ल होता है तो लोग फौरन उन्हें झटका लगता है और उन्हें महसूस होने लगता है यार हम कितनी उल्टी हरकतें कर रहे हैं। यानी ये वाली निजासत जो है वो मकतूल फ़ी सबीलिल्लाह या शहीद के खून से पाक होती है, और उसके बाद फिर उसको ज़ियारत आशूर के जुमले का हवाला देते हैं, तिब तुम व ताबतिल अर्दुल लतीफ़ीहा दुफ़िनतुम। हम ज़ियारत तो पढ़ जाते हैं, जुमलों पे गौर नहीं करते। आप पाक हैं और जिस ज़मीन में आप दफन हुए, आपके दफन की बरकत से वो ज़मीन भी पाक हो गई। ठीक, लेकिन एक ऐसी निजासत है कि जिसको खून शहीद भी पाक नहीं कर सकता, और वो निजासत है फिक्री इनहराफ, वो निजासत है इंसान की मारिफत में नापाकी, यानी शिर्क। ठीक है, गैर अस खुदा के सामने झुकना, उससे सिर्फ और सिर्फ अल्लामा तबातबाई के कलम, अल्लामा तबातबाई और उन जैसों के कलम के जरिए से पाक किया जा सकता है। इसलिए कहना दुरुस्त है कि मिदादुल उलमा अफ़ज़लु मिन दिमा शुहदा। तो ये जो शहीद है ना, ये जो शहीद है, अब शहीद का माना समझे, शहीद यानी गवाह, ये जो शहीद है कि जिसकी पूरी जिंदगी गवाही देती है कि दीन हक है, ये उससे ऊपर है इसका दर्जा, इस शहीद का दर्जा। रसूल खुदा को कुरान करीम ने शोहदा पर शाहिद करार दिया है। रसूल करीम का जो मकाम है वो शाहिद शोहदा है, और वो आयत आपको शहीद की जो डेफिनेशन कुरान ने बयान की है वो भी मैं आपको बता दूं कहां पर है। सूरह हदीद की आयत नंबर, आयत नंबर 19, वल्लज़ीना आमनू बिल्लाही व रसूलिही, वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह पर और रसूलों पर, न के रसूल पर, ठीक है, इस बात पे ख़ास तौर से गौर कीजिएगा, रसूलिही तमाम रसूलों पर, उलाएका हुमुस्सिद्दीकून व शुहदाउ इंद रब्बिहिम, उनके रब की बारगाह में वही शोहदा हैं, वही सिद्दीक हैं। इतनी सी तारीफ है बस। जिनकी पूरी जिंदगी गवाही देती है,
ये मक्तूल वाला नहीं है जो जिहाद में जाना।
हाँ, वो मक्तूल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, उससे वो मसला नहीं है ना। जैसे मिसाल के तौर पर जाहिरन अगर हम कहें कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम या इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम मक्तूल नहीं हुए, ज़ाहिरन नहीं हुए, कोई कर सकता है बेज़ाहिर तो वो पता नहीं है ना उस तरीके, कोई तीर तलवार का तो ज़ख्म नहीं था, तीर तलवार खंजर, तो क्या वो शहीद नहीं है? या मिसाल के तौर पर, यानी अब उसकी हम इसी मिसाल को ले लें, जैसे अल्लामा तबातबाई की मिसाल है, खुद इमाम खुमैनी की मिसाल है, उससे सबसे बढ़कर। और ये मैंने जब पाकिस्तान में बात हो रही थी ना तो मैंने यही मिसाल ली थी, मैंने ये कहा था कि जब जिस इंसान पर ईमान लाए बगैर कोई शहीद नहीं हो सकता, जिस शख्स पर ईमान लाए बगैर कोई शहीद नहीं हो सकता, तो उसके बारे में, ठीक है, तो ये तारीफ जो है ना वो ये है, कुरान करीम ने इनको ये दो अलग बयान किए हैं, लेकिन ये ओवरलैप हो सकते हैं कि जो, और फिर वही कि जो मक्तूल है वो फी सबीलिल्लाह हो, ये बहुत वाजिब है, फी सबीलिल्लाह शर्त है, मक्तूल नहीं, फी सबीलिल्लाह। और फी सबीलिल्लाह के लिए तीन चीज़ों की कुरान ने कैद लगाई है, ईमान, सब्र और सलात, ये तीनों चीज़ें उसके पास हों, और इस हालत में वो कत्ल होगा तो मक्तूल फी सबीलिल्लाह, ठीक है, लेकिन शहीद एक दूसरा दर्जा है।
तो जो जंग में हमारे जो बात में की थी कि
जी
फौजी होते हैं और जो भी शहीद जैसे कहते हैं, हम सवाल में पॉलिटिकली जो होते हैं, तो مقتول فی سبیل اللہ، یعنی بیٹر لانگ الیبریٹیو،
اگر وہ اس نیت سے